ये आकाशवाणी है, अब आप अपर्णा सिंह से समाचार सुनिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों में 70% कमी आई है और आतंकी घटनाओं में भी भारी कमी हुई है। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का उत्तर देते हुए श्री शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की तीन बड़ी चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया है। गृहमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाकर मोदी सरकार ने संविधान निर्माताओं के एक संविधान एक झंडे का सपना पूरा किया है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष मार्च तक भारत में नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के सभी हथियारबंद संगठनों से औपचारिक बातचीत की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से अब तक 12 महत्वपूर्ण शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए कृषि मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। श्री चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने अब तक 75.74 करोड़ मीट्रिक टन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की है। कृषि मंत्री ने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए डिजिटल एग्री मिशन के अंतर्गत देश के हर किसान को एक डिजिटल पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। लोकसभा ने केंद्रीय बजट में वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगें पारित कर दी हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रसायन और उर्वरक, बिजली, वाणिज्य और उद्योग, आवासन और शहरी कार्य, सूचना और प्रसारण तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अनुदान मांगे बिना किसी चर्चा के पारित कर दी हैं। सदन ने विभिन्न मंत्रालयों के लिए अनुदान मांगों के सिलसिले में कुछ सदस्यों द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव नामंजूर कर दिए। इसके बाद लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किए गए विनियोग विधेयक 3/2025 को भी लोकसभा ने पारित कर दिया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजूमदार ने मंगोलिया के विदेश सचिव के राज्य सचिव मुखंतुशिंग लखनाजाव के साथ बैठक की। दोनों पक्षों ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा उच्च स्तरीय संपर्क बनाए रखने पर चर्चा की। उन्होंने विकास साझेदारी, शिक्षा, आईटी, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति, क्षमता निर्माण, खनन, रक्षा और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कई गतिविधियों पर सहमति जताई और विदेश कार्यालय के संविधान को औपचारिक रूप से सचिव स्तर तक उन्नत करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 3 अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी और एक भारतीय मददगार को गिरफ्तार किया है। अपराध शाखा को इस अभियान में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चल रहे मानव तस्करी के नेटवर्क का पता चला है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये अपराध गिरोह असम के रास्ते बांग्लादेशी नागरिकों की तस्करी कर उन्हें अवैध तरीके से भारत में ला रहा था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और भारतीय पासपोर्ट सहित जाली दस्तावेज मुहैया कराकर ये गिरोह बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली में अवैध रूप से बसाने में मदद कर रहा था। स्विस ओपन बैडमिंटन में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला युगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्विट्जरलैंड के बासिल में खेले जा रहे मुकाबलों में राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता त्रिशा और गायत्री ने हांगकांग चीन की 8वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी योंग नगाटिंग और योंग पुई लैम को 21-18, 21-14 से हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना चीन के लिए शिंगशू और टैन निंग से होगा। इंडियन प्रीमियर क्रिकेट लीग आईपीएल का 18वां संस्करण आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।